आरव आयु को ओबरॉय मेंशन ले जा रहा था। थके होने की वजह से आयु गाड़ी में ही सो गई। उसकी इस हरकत पर आरव को आयु पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। ओबरॉय मेंशन आने से लगभग 20 मिनट पहले आरव ने गाड़ी रोकी। ओबरॉय मेंशन आने से पहले वो आयु को जगाना चाहता था। आयु को जगाने के लिए आरव ने आयु के गाल पर किस किया, फिर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आरव ने आयु को देखकर आइज रोल की और कहा, आई नो तुम गुस्सा करोगी, पर अब तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद रहने वाली हो। बोलते हुए आरव के फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने आयु के ईयरलोब पर किस किया और फिर किस करते हुए वहां पर जोर से बाइट किया। आयु दर्द से चिल्लाते हुए उठी। उसने आरव को खुद पर झुका हुआ देखा। आयु समझ गई थी आरव ने उसे जगाने के लिए क्या किया होगा। आयु ने आरव को तिरछी निगाहों से देखा और चिढ़ते हुए कहा, मैं ना किसी दिन तुम्हारी जान ले लूंगी। इतने में ही इतना कौन चिल्लाता है, आरव ने सिर हिलाकर कहा, और जान तो मैं तुम्हारी लेने वाला हूँ और तुम इसी तरह से चिल्लाने वाली हो। बोलते हुए आरव ने आई विंक की और ड्राइव करने के लिए सही से बैठ गया। तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी नहीं हो रहे आरव फिराना, जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, आयु ने चिढ़कर कहा। आरव की बातों से वो हल्का ब्लश कर रही थी, पर साथ ही वो ये आरव को जाहिर नहीं करना चाहती थी। अफकोर्स मिसेस खुराना, किसी और के साथ तो नॉटी हो नहीं रहा, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारे साथ ऐसी बातें भी कर सकता हूँ और हरकतें भी, आरव ने मुस्कुराकर कहा। फिर वो कुछ पल रुका और आगे कहा, वैसे एक बात नहीं बताई तुमने, आखिर कब तक तुम मुझसे दूर रहने वाली हो? डोंट टेल मी तुम्हें अभी भी टाइम चाहिए और तुम तैयार नहीं हो। आरव के सवाल से आयु हड़बड़ा गई। वो खुद भी कन्फ्यूज थी। जब वो आरव से प्यार करती है और उसे आरव के करीब आने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर क्यों आरव और उसके बीच दूरियां हैं? आयु को चुप देखकर आरव ने पूछा, क्या हुआ मिसेस खुराना, इसमें इतना क्या सोचना, तुम्हें क्या चाहिए? आयु ने जवाब देते हुए कहा, मुझे बस एक अच्छा वेकेशन चाहिए ताकि काम से फ्री होकर तुम्हारे साथ टाइम बिता सकूं। मुझे हॉस्पिटल के चक्कर में कुछ होश नहीं रहता, इतना काम होता है कि बस नींद ही दिखाई देती है। एक ब्रेक लेकर सब, बोलते हुए आयु रुक गई। उसे पता था आरव आगे सब खुद ही समझ जाएगा। अच्छा तो ये बोलो ना, कल ही मिस्टर कपूर से कहकर तुम्हें काम से निकलवा देता हूँ, फिर तुम पूरी तरह फ्री हो जाओगी, आरव ने आयु को परेशान करने के लिए कहा। उसकी बातें सुनकर आयु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो आरव के हाथ पर मारते हुए बोली, ए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरा शेड्यूल टाइट है, मैं खुद ही बता दूंगी, तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकते क्या? और कोई रास्ता छोड़ा है तुमने, आरव ने मुंह बनाकर कहा। उसने गाड़ी रोक दी क्योंकि ओबरॉय मेंशन आ गया था। गाड़ी रोकने के बाद भी आरव गाड़ी से बाहर नहीं निकला था। उसने आयु की तरफ देखकर कहा, ठीक है कर लूंगा वेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके लिए भी टाइम टाइम पर तुम्हें मुझे रिश्वत देनी होगी। आयु आरव के कहने का मतलब समझ पाती उससे पहले आरव ने उसे अपने पास खींचा और उसके लिप्स पर किस करने लगा। बीच में उसने किस ब्रेक करते हुए कहा, बस इसी तरह कुछ करना है, कहकर आरव फिर से उसे किस करने लगा। वही रुद्र इस वक्त ऑफिस से वापस आया था। उसने देखा कि आरव और आयु की गाड़ी भी उनसे आगे चल रही थी। वो घर तो पहुंच गए थे लेकिन गाड़ी में से बाहर नहीं निकले थे। रुद्र अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उनकी गाड़ी को हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव और आयु घर आने के बाद भी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहे। फिर अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और आरव बाहर निकला। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। आयु भी गाड़ी से बाहर आ गई थी और वो आरव को गुस्से में घूर रही थी। एक तो उसने अचानक आयु को किस किया था, ऊपर से वो लोग इस वक्त आयु के घर के आगे खड़े थे। आयु के बाल बिखर गए थे। वो आरव के पास आकर बोली, आगे से बेडरूम के अलावा तुमने मुझे कहीं किस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये धमकियां मुझ पर काम आएंगी मिसेस खुराना? चलो अपने बाल सही कर लो, वरने तुम्हारे बिना बताए ही सबको सब पता चल जाएगा, आरव ने जवाब दिया। वो आयु के बाल ठीक करने लगा। उस पर आयु की धमकी का सच में कोई असर नहीं हुआ। वही रुद्र उन्हें दूर से देख रहा था और उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि गाड़ी घर के बाहर क्यों खड़ी थी और अब आयु आरव पर गुस्से की वजह क्या थी। अचानक रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई और वो दूर से ही तेज आवाज में बोला, तुम दोनों अंदर जाने से पहले और टाइम लेना चाहो तो ले सकते हो। रुद्र की बातों से आयु को और एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तो वहीं आरव ने जवाब में कहा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी बहन मुझे मार डाले? कहकर आरव ने सिर हिला दिया और आयु का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। आयु के चेहरे से आरव उसका हाल समझ सकता था। उसने अंदर जाते हुए धीरे से कहा, इतना एम्बेरसिंग होने की जरूरत नहीं है, इस तरह सबके सामने गुस्सा करोगी तो अपने आप ही सबको पता चल जाएगा, तुम नॉर्मल नहीं रह सकती क्या? हाँ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम इतने अबनॉर्मल हो, तुम्हारी हरकतें इतनी अनप्रिडिक्टेबल हैं कि मैं नॉर्मल नहीं रह सकती, तुम मुझसे दूर रहो, आयु ने इरिटेट होकर जवाब दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। वहीं रुद्र रुद्र के पास ही रुक गया। दोनों साथ में लिविंग रूम में बैठकर कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ छवि सिंघानिया को फैज का मैसेज मिलते ही वो सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल में पहुंची। वो एजाज खान के लिए कई सालों से काम कर रही थी, इसलिए उसकी काफी क्लोज थी। उसे हमेशा से फैज से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। वो कम बोलता था और थोड़ा सनकी टाइप का था, इस वजह से छवि उससे दूरी बनाकर ही रखती थी। अचानक फैज की छवि को बुलाने पर वो परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसके पास ना करने का ऑप्शन नहीं था। शाम के लगभग 7 बजे के करीब छवि कुछ फ्रूट्स और बुके के साथ हॉस्पिटल पहुंची। फैज ने पहले ही रिसेप्शन पर बोल दिया था कि आज उसकी गेस्ट उससे मिलने आने वाली है। उसके आते ही नर्स उसे फैज के रूम में लेकर गई। छवि के आते ही फैज ने ड्यूटी कर रही नर्स को बाहर भेजा, तो वहीं फैज को चोट लगी देखकर छवि ने अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन जाहिर किए मानो उसे फैज को उस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा हो। मिस्टर खान, आपकी ऐसी हालत किसने की? क्या कोई नया दुश्मन है जिसने आपके साथ ये सब किया? छवि ने बुके साइड में रखते हुए कहा। छवि को खुद की चिंता करते देखकर फैज ने उसे तिरछी निगाहों से घूरा और फिर आईज रोल करके कहा, कम ऑन, हमारे सामने अच्छा होने का दिखावा मत कीजिए। यहाँ पर पापा नहीं है जो आप इतना शुगर कोटिंग बातें कर रही हैं। वन मोर थिंग, कोई ऐसा नहीं है जो हमें चोट पहुंचा सके। हमें एक खरोच भी आती है तो उसका रीजन भी हम खुद ही होते हैं। फैज का जवाब सुनकर छवि हैरान थी। उसने खुद ही अपनी ये हालत की थी। उसने फैज के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में बड़बड़ाकर कहा, मुझे तो पहले ही लगता था कि ये आदमी साइको है, और आज इसने साबित भी कर दिया। भला कौन खुद को चोट पहुंचाता है? फैज ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और छवि की तरफ देखकर कहा, हमें पता है आप क्या सोच रही हैं। आपको ये लग रहा होगा कि कोई पागल ही होगा जो खुद को चोट पहुंचाता होगा, लेकिन हम पागल नहीं हैं। आपको पहले ही बता दे कि हमारे हर एक मूव के पीछे एक कारण होता है, इसके पीछे भी है। चलिए बैठिए, हमें लंबी बातें करनी है। छवि हैरानी से फैज की तरफ देख रही थी। जो बातें उसने मन में कही थी वो उसे पता चल गई थी। उसने तुरंत अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल किया और वहां पर बैठ गई।
छवि के वहां बैठते ही फैज बोला, आरफ खुराना की शादी उस लड़की से कब हुई थी? हमें उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है जो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है। फैज ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे सब पूछ लिया। हाँ सुना मैंने, रोहन चौहान मर चुका है, तो ऐसे में उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालना आम सी बात है। सर ने उसे मारने के ऑर्डर्स दिए होंगे, उसे मारने के लिए आपने खुद को क्यों नुकसान पहुंचाया? उसे तो कोई भी आसानी से मार सकता था। आप कब से ये छोटे मोटे काम करने लगे? छवि ने टॉन्टिंग वे में जवाब दिया। फैज ने उसे सर्द निगाहों से देखा और कहा, जितना पूछा है उसका जवाब दो, हमें नफरत है जब कोई हमारा टाइम वेस्ट करता है। फैज की धमकी से छवि घबरा गई। वो जल्दी जल्दी उसे सब बताने लगी। वो लड़की एक डॉक्टर है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। एक्चुअली कुछ महीनों पहले उसकी बहन की मौत हो गई थी और वो आखिरी वक्त में आरव के साथ थी। उसे ये लगता था कि आरव ने ही उसकी बहन को मारा है, इसलिए बदला लेने के लिए वो आरव के पास जाना चाहती थी। रोहन ने उसका पीछा किया तो उसे लगा कि आरव को उसमें इंटरेस्ट आने लगा है, इसीलिए उसने उस लड़की को अपनी तरफ से ट्रेंड किया ताकि इसका बदला भी पूरा हो सके और हमारा काम भी निकल जाए। इस बीच उस लड़की को पता चल गया कि रोहन ने उससे झूठ बोला है और आरव ने उसकी बहन को नहीं मारा था। आरव ने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उसने मना कर दिया। रोहन ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पर वो भी काम नहीं आया। तो रोहन ने कुछ वीडियो उसके घर वालों को भेज दिए जिसमें वो और आरव काफी क्लोज थे। वो वीडियो एडिटेड थी, इसलिए घर वालों को लगा कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है और उनकी बदनामी होगी। उन्होंने उन दोनों की शादी करवा दी। आगे मुझे नहीं पता कि क्या कैसे चल रहा है। ये सब न्यूज़ मुझे फलक के जरिए पता चली थी। जब से फलक और रोहन से कॉन्टैक्ट टूटा है, मुझे उन दोनों की लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है। फैज से डर के मारे छवि ने उसे सब कुछ एक सांस में बता दिया। वैसे भी जो इंसान खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए किसी और को मारना कोई मुश्किल बात नहीं थी। सारी बातें जानने के बाद फैज के चेहरे पर गुस्सा था। उसने छवि की तरफ देखकर शांत लेकिन तीखे लहजे में कहा, कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते और इनोसेंट हैं, उन्हें इन कामों में इन्वॉल्व मत किया करो, लेकिन तुम लोगों की आदत जाएगी नहीं ना। भले ही वो अंडरवर्ल्ड और इल्लीगल कामों से जुड़े हुए हों, लेकिन उनके भी कुछ उसूल थे। वो मासूम लोगों को अपनी दुनिया में शामिल नहीं करना चाहते थे। फैज की बात सुनकर छवि की नज़रें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, ये सब उस रोहन चौहान ने किया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो लड़की हमसे किसी भी बहाने से सही लेकिन जुड़ गई है। रूल्स कभी बदले नहीं जाते, किसी के लिए भी नहीं, और उसे भी मरना होगा। बस उसका मरना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो आरव खुराना की पत्नी है। भले ही छवि के चेहरे पर अफसोस के भाव थे, लेकिन दिल ही दिल में उसे खुशी हो रही थी। आयु के मरने से आरव को जो तकलीफ होने वाली थी, उसके बारे में सोचकर ही उसे सुकून महसूस हो रहा था। इस बार छवि के बिना कुछ किए ही आरव को दर्द होने वाला था। आफ्टर ऑल वो आयु से इतना प्यार जो करता था।